इस वक्त आप जो रूपरवर पैगाम सुनने को हैं, वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।
खुदा का खत, खुदावंद यीशु मसीह के छोटे भाई यहूदा ने लिखा अराउंड 65-80 AD में, और यहूदा अक्सर जो बाइबल के तराजम हैं उनमें सेकंड लास्ट बुक है न्यू टेस्टमेंट की। इसको मुकाशवे के साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि यहूदा का खत जो है सेकंड कमिंग के ताल्लुक से हमें बहुत वैल्यूबल अंडरस्टैंडिंग देता है। और जैसा कि लास्ट टाइम हमने इसको देखा कि जूड अपने लेटर में 6 नेगेटिव साइंस देता है खुदावंद की कमिंग के ताल्लुक से और एक पॉजिटिव साइन है। टोटल 7 इंडिकेशंस हमें मिलती हैं किस ताल्लुक से कि जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आएंगे चर्च, सोसाइटी, कल्चर, माशरा, दुनिया की हुकूमतें, उनका स्टाइल और स्टैंडर्ड क्या होगा। और इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट संडे, कि इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए दो चीजों का होना बहुत लाजम है। नंबर 1, द फॉलिंग अवे ऑफ द चर्च, कलीसिया में जवाल, और सेकंड चीज जो उसके आने से पहले वकूम में आनी है दैट इज कि गुनाह का फर्जंद जाहिर होगा, हलाकत का फर्जंद जाहिर होगा, यानी मुखालफे मसीह। आयम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, तेरी कलाम की बातें खूबसूरत बातें हैं, उम्मीद हैं, गहरी हैं, हमें समझ, हिकमत, दनाई, फहम अता कर दे कि हम इन जिंदगी की बातों को और तेरी आमदसानी की बातों को पाक रूह के वसीला से समझते हुए अपने आप को उस बड़े दिन के लिए तैयार करें जब हम हवा में उड़कर बादलों पर तेरा इस्तकबाल करेंगे। खुदावंद अपने लोगों के साथ हो और कलाम की समझ, तरतीब और ए खुदावंद अमल करने का फजल बख्श दे, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। यहूदा का आम खत 240 पेज पे तीसरी और चौथी आयत में यहूदा हमें ये बताते हैं कि फाइट फॉर योर फेथ, अपने ईमान के लिए जान फिशानी करो जो मुकदसों को एक ही बार सौंपा गया है। फाइट फॉर योर फेथ, अपने ईमान के लिए जान फिशानी करें, ईमान के लिए मेहनत करें, ईमान के लिए कुर्बानी दें, ईमान के लिए स्ट्रगल करें, ईमान के लिए खड़े रहें। चौथी आयत, बाज ऐसे लोग हम में चुपके से आ मिले हैं जिनकी सजा का हुक्म कदीम जमाने में पेशतर से लिखा गया था। कलीसिया में जूड ये कहते हैं कलीसिया में खामोशी से, चुपके से ऐसे लोग आ मिले हैं जिनको अजर न है बल्कि सजा मिलनी है। प्रॉब्लम क्या उनके साथ, ये बेदीन हैं। कैसे लोग हैं, दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल न करें। ये बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं। बेदीन है। नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है कि कन्फेस करते हैं कि हम दीनदार हैं लेकिन अमली जिंदगी में क्या है, बेदीन है। और खुदा के फजल को क्या बना दिया उन्होंने, चीप ग्रेस, जो डॉक्ट्राइन में एक टर्म यूज होती है कि आप जो कुछ मर्जी कर लें खुदा माफ कर देगा। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा फजल करता है, आप जो कुछ मर्जी करते रहें खुदा माफ कर देगा। सो चीप ग्रेस इज वेरी डेंजरस ग्रेस। नंबर 3, اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں. سو واٹ از پرابلم وتھ دیم؟ دے ہیو پروڈیوسڈ ادر جیزس. ایک اور یسوع انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق بنا دیا ہے. امریکہ میں ایک گروپ ہے جسے ہم کہتے ہیں جیزس سیمینارز, اور وہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ایسی ایسی ٹیچنگز دیتے ہیں اور سیمینارز کرتے ہیں جو بالکل بائبل کے سپیکٹرم سے باہر ہے. سو پانچویں آیت سے ہماری اسٹڈی جو شروع ہوتی ہے, اور ہم پڑھیں گے پانچویں آیت سے لے کر آٹھویں آیت تک.
تھینک یو جیسس. یہودا کا عام خط اس کی پانچویں آیت سے لے کر آٹھویں آیت کے آخر تک. بس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو, تو بھی یہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے, اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا, ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. اسی طرح سدوم اور امورا اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں, تو بھی یہ لوگ بھی اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر ان کی طرح جسم کو ناپاک کرتے اور حکومت کو ناچیز جانتے اور عزت داروں پر لانتان کرتے ہیں.
یہ ساری سٹڈی ہم نے لاسٹ سنڈے دیکھی, لیکن ایک بار پھر سے میں ریوائز کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے جو لاسٹ ٹائم نہیں تھے. جوڈ ہمیں جو چیز دکھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اینڈ ٹائمز میں کلچر ہوگا, معاشرہ ہوگا, چرچ ہوگا, اس کی تصویر کیا ہوگی. اٹھارہویں آیت ہم پڑھ لیں گے, پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں پچھلی آیات میں ان کا تعلق کس زمانہ کے ساتھ ہے. اٹھارہویں آیت.
پریز دلو. وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ اخیر زمانہ میں ایسے ٹھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے.
سو یہودا کس زمانے کی تصویر میں دکھا رہے ہیں؟ اخیر زمانے میں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اور جو ہم سے پہلے بزرگ تھے تمہیں یہی تعلیم دی ہے کہ اخیر زمانہ میں ٹھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے, اپنی مرضی کے موافق یا بے دینی کے موافق چلیں گے. تو وہ سکس سائنس امیجز کیا ہیں جو ہمیں معاشرے میں اور چرچ میں نظر آئیں گی, وہ سکس ایگزامپلز کیا ہیں, اور ساتویں جو مثبت ایگزامپل ہے وہ کیا ہے. سو نمبر ون, پہلی مثال جو ہمیں اس میں دی گئی وہ اسرائیل کی ہے کہ جیسے اسرائیلی بے دین ہو گئے, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا ان کے بارے میں لکھا ہے, خدا ان میں سے بہتوں کے ساتھ خوش نہیں تھا. دوسرا سائن کیا ہے؟ فرشتے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ نوح کے زمانے کی, پیدائش 6 باب. ان دنوں میں زمین پر جبار تھے. تیسرا جو ریفرنس دیا گیا وہ ہے سدوم اور امورا. ابھی ہم نے یہ تینوں پوائنٹس کو دیکھا ہے, اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا, اس سے پہلے اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ خداوند نے ایک امت کو مصر میں سے چھڑانے کے بعد ان کو ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے. اور تیسری ایگزامپل وہ دیتے ہیں ساتویں آیت میں, اسی طرح سدوم اور امورا. پہلی تین ایگزامپلز کیا ہیں؟ اسرائیل, فرشتے, سدوم اور امورا. یعنی اسرائیل کا زمانہ, नूह का जमाना और लूत का जमाना। और लास्ट मैसेज में भी हमने देखा कि ये दोनों मिलते जुलते हैं, नूह का जमाना और लूत का। डिफरेंस क्या है? नूह के दौर में फरिश्ते आदमियों के पास आए उनसे बद किरदारी करने के लिए, और लूत के जमाना क्या है कि लोग फरिश्तों के पास आए उनके साथ बद किरदारी करने के लिए। सेम सिचुएशन, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। इसके बाद इन तीन पॉइंट्स को बताने के बाद यहूदा जो है बीच में हमें वार्निंग देते हैं। तीन चार आयतें जो हैं वो वार्निंग की आते हैं, और उसके बाद फिर वो आखिरी जो तीन साइन है वो मेंशन करते हैं, और वो साइन कौन से हैं? काइन, बलाम और कोरा। और उसके बाद वो सातवीं एग्जाम्पल हमें देते हैं किसकी? हनूक की। चौदहवीं आयत में जो रैप्चर, उठाए जाने की और खुदावंद यीशु मसीह का जो आना है उसके ताल्लुक से मेंशन करता है या पॉइंट आउट करता है। सो वो तीन आयत भी हम पढ़ लेंगे ताकि हम ये जो वार्निंग हमें बीच में देगी आठवीं आयत से लेकर दसवीं आयत तक।
तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते और हुकूमत को नाचीज जानते और इज्जतदारों पर लानतान करते हैं, लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाइल ने मूसा की लाश की बाबत इबलीस से बहस व तकरार करते वक्त लानतान के साथ उस पर नालिश करने की जुरत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावन तुझे मलामत करे, मगर ये जिन बातों को नहीं जानते उन पर लानतान करते हैं, और जिनको बेअक्ल जानवरों की तरह तबई तौर पर जानते हैं उन पर उनमें अपने आप को खराब करते हैं।
सो सीक्वेंस ये है यहूदा के लिखने में कि पहले तीन नेगेटिव पॉइंट्स हमें बताए गए और चर्च को यह बताया गया कि अगर तुम इनकी तरह चलते रहोगे, किन की तरह? जैसे इसराइली चलते रहे, जैसे नूह का जमाना था नूह के लोग थे, जैसे लूत का जमाना था लूत के लोग थे, तो जैसे उनका अंजाम हुआ वैसे ही तुम्हारा अंजाम होगा। इन तीन बातों को, साइंस को बताने के बाद जूड अपने लिस्ट में पॉज लेते हैं और तीन वार्निंग्स हमें बताते हैं जो अभी हमने पढ़ी आठ से लेकर दस आयत तक। फिर वो ग्यारहवीं आयत पे जंप करते हैं और जो आखिरी तीन पॉइंट्स हैं वो हमें बताते हैं कि अखीर जमाने का जो कल्चर होगा, जो माशरा होगी, जो सोच होगी, जो चर्च होगा वो इस तरह का होगा। स्वयं पढ़ें ग्यारहवीं आयत।
इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए।
तो छह एग्जाम्पल हमें दी गई। जो पहली तीन हैं वो क्या हैं? इसराइल, फरिश्ते और सदूम और अमोरा। और जो आखिरी तीन एग्जाम्पल्स हमें दी गई वो क्या है? काइन की तरह और बलाम और कोरा। काइन, बलाम, कोरा, इन तीन की एग्जाम्पल्स दी गई। सो गर्चे जूड ने अपना जो भी राइटिंग है बहुत ब्रीफ लिखी है, लेकिन इसके अंदर उसकी एक अपनी डेप्थ और खूबसूरती है ताकि जो पहले बातें लिखी गई दोबारा से उनको रिवाइज किया जा सके और हम ये समझ सकें कि अगर ये छह किस्म का कल्चर हमें अपने माशरे में और अपने चर्च में नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम आमदे सानी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। और फिर वो चौदहवीं आयत में सातवां रेफरेंस देते हैं सेकंड कमिंग का, जो पॉजिटिव रेफरेंस है, और वो किसके ताल्लुक से है? हनूक के ताल्लुक से है। हाँ जी, ये भी पढ़ देंगे।
इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से सातवीं पुश्त में था یہ پیشین گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا.
ان کا جو لکھنے کی سوچ ہے اور پوائنٹ آف ویو کیا ہے, خداوند یسوع مسیح کا آنا, اور جیسے 18ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ وہ اخیر زمانہ کی بات کر رہے ہیں. اب ہم تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ جو 6 ریفرنس دیے گئے ان کا مطلب کیا ہے, ان کا ٹارگٹ کیا ہے, اور ہم نے ان کو کیسے آج اپنے معاشرے پہ اپلائی کرنا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کو ڈسکس کریں ون بائی ون, ایک جو مین بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان میں خرابی کہاں سے آئی ہے, کیوں آئی ہے, کیسے آئی ہے, اور کہاں سے اس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے. مین پرابلم جو انسان کے ساتھ آج ہے, چرچ کے اندر جو لوگ ہیں اور جو چرچ کے باہر لوگ ہیں, مین پرابلم جو ان کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ سوچنے میں بگاڑ آ گیا ہے. تھنکنگ, مین ہیز لاسٹ ہز ابیلٹی ٹو تھنک رائٹسلی. انسان کی جو سوچنے کی کیپیسٹی اور جو ڈسیزن کرنے کی کیپیسٹی ہے اور خدا کے ساتھ جو چلنے کی کیپیسٹی ہے, ہمارے سامنے آج کے چرچ کی اور آج کے جو معاشرہ ہے اور جو کلچر ہے اس کی ایک تصویر آ جاتی ہے. نمبر ون, اسرائیل کی ایگزامپل ہمیں دی گئی اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ خدا ان کے ساتھ خوش نہیں تھا. اور کیوں خوش نہیں تھا؟ بیکاز دے ور نومینل جیوز. یہ امت ہونٹوں سے تو مجھے خداوند خداوند کہتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. اور آج مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کا چرچ نومینل چرچ ہے, روایتی چرچ ہے, مذہبی چرچ ہے, اور کم ایسے لوگ ہیں جو دل کے ساتھ یا دل سے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں. سو پہلی تصویر جو ہمیں وہ دکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اینڈ ٹائمز میں مسیح کے آنے سے پہلے چرچ کا جو ایک بگر سیگمنٹ ہے وہ نومینل ہو جائے گا, روایتی ہوگا اور لیگلسٹک ہوگا, اور جسے کہتے ہیں کہ بس خانہ پوری کرنے کے لیے چرچ میں آنا ہے. لیکن یاد رکھیں آپ کے چرچ میں آپ کی جگہ ہے, خدا کے گھر میں آپ کی ایک جگہ ہے, خدا کے پلان میں آپ کی ایک جگہ ہے, آپ کے زندگی کے لیے, آپ کے گھر کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, خدا کے پلان میں, خدا کے دل میں ایک جگہ ہے. اور میری اس بات کو آپ بڑی سیریسلی لیں, نیور ایور مس یور چرچ. اگر کوئی آپ کہیں انتہائی مصروف نہیں ہے یا کوئی ایمرجنسی سچویشن نہیں ہے, نیور ایور ٹرائی ٹو مس یور چرچ. بلی گرام اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے گھر میں اور اپنے شہر میں ہوتا ہوں کیرولائنا میں, آئی نیور مس مائی چرچ ریگولرلی, ہر سنڈے وین ایور آئی ایم بیک ایٹ ہوم آئی ایم ان مائی چرچ. اور کہتے ہیں خوبصورت بات یہ ہے کہ میرے پاسٹر نے آج تک مجھے چرچ میں میسج دینے کے لیے نہیں کہا. فار ڈیکیڈز میں اپنے چرچ کا ممبر ہوں, 10 سال 20 سال 30 سال گزر گئے اور سب مجھے جانتے ہیں کہ میں کلام سنا سکتا ہوں, میں ایوینجلسٹ ہوں, میں مبشر ہوں, لیکن میرے اپنے پاسٹر نے مجھے اپنے میرے چرچ میں کبھی کلام سنانے کا موقع نہیں دیا. وہ کہتے ہیں یار میں جو موجود ہوں, آپ آئیں, آپ کا یہ چرچ ہے, آپ ممبر ہیں, آپ کلام سننے کے لیے ہیں. اور اسی انٹیگریٹی کی وجہ سے خدا نے اپنے بندے کو بلیس کیا ہے. بلی گرام کی یہی کوالٹی ہے, انٹیگریٹی. ہم نے خدا کی کہی ہوئی باتوں کو پورا کرنا ہے, فالو کرنا ہے. سیکنڈلی, اس کی دعائیہ زندگی اس کو اس مقام تک لے گئی کہ ایسا خدا کا خادم ہے جس کی زندگی میں 50 سال سے زیادہ جس نے خدمت کی ہے, اور اس کی لائف میں مسٹیکس تو ہو سکتی ہیں, سکینڈلز کوئی نہیں. جب آپ خدا کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ سیدھے چلتے رہتے ہیں. اسرائیل, خدا ان میں سے بتھیروں کے ساتھ خوش نہ ہوا. نمبر دو, نوح کا زمانہ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل سٹڈی کریں گے, لوط کا زمانہ کیا تھا اور نوح کا زمانہ کیا تھا. لیکن ان شارٹ, نوح کا زمانہ کیا ہے؟ جو مین پرابلم ہے نوح کے زمانے میں وہ یہ ہے کہ اٹس اے مکسچر. کیا چیز ڈیولپ ہو رہی ہے؟ اے مکسچر آف ہیومن بینگز اینڈ ڈیمونک بینگز. ان دنوں میں زمین پر جبار تھے, خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیاں, ان میں سے سورما پیدا ہوئے جو آج بھی ہمارے درمیان ہے. مین تھیم کیا ہے نوح کے زمانے کا؟ کہ انسانی لائف اور ڈیمونک لائف آپس میں ان کا ملاپ ہو رہا ہے. اسپرچلزم اور ازم کا آپس میں مکسچر ہے. نوح کے زمانے کی پرابلم کیا تھی؟ مکسچر آف ہیومن لائف وتھ ڈیمونک لائف. سیم تھنگ از ہیپننگ ٹوڈے, لیکن چرچ کو ابھی وہ اینک نہیں لگائی گئی جس سے وہ ان باتوں کو دیکھ سکیں. اگین, ایک بار پھر سے ہیومن بینگز کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ شیاطین کا ملاپ ہو رہا ہے. خدا کی ٹیچنگ کے ساتھ ڈیمونک ٹیچنگ کا ملاپ ہو رہا ہے. دنیا کو ایک بار پھر سے اوکلٹ میں دھکیلا جا رہا ہے. دھکیلا نہیں جا رہا, بلکہ دھکیلا جا چکا. سیم جو نوح کے زمانے میں تھا کہ فرشتے, ڈیمونک فرشتے اور انسان ایک ہی روش پہ چل رہے تھے. انہوں نے اپنی زندگیاں بلینڈ کر دی تھی, ان سے نسلیں پیدا ہو رہی تھیں. And same thing is happening today. کس کیپیسٹی میں, کس طرح سے آج بھی چرچ اوکلٹزم میں مرج کر رہا ہے. اوکلٹزم چرچ میں داخل ہو رہا ہے, چرچ اوکلٹزم میں داخل ہو رہا ہے. سیم جیسے نوح کے زمانہ میں تھا. اوکلٹزم اتنا نزدیک آ چکا ہے اور اس قدر ہمارے کلچر میں داخل ہو چکا ہے کہ ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں. ہم سمجھ نہیں رہے کہ یہ نوح کا زمانہ ہے. گیمز میں, گیمز گیمز ہونی چاہیے, لیکن گیمز کیا بن گئے؟ اولمپس کی دیوی نے سب کچھ کنٹرول کر لیا ہے. آخری زمانے میں دو چیزیں انسان کو کنٹرول کرتی چلی جائیں گی. نمبر ون ڈیمونک, نمبر دو پیسہ. اگر آپ ہوشیار نہیں رہیں گے, خبردار نہیں رہیں گے, ویجلنٹ نہیں رہیں گے, یہ دو چیزیں انسان کو اپنے ٹریپ میں لے کے جا رہی ہیں. نمبر ون ڈیمونک. ایکسرسائزز میں دیکھیں ڈیمنز آ گئے, یوگا کریں, فلاں چیز کریں, ایسٹرن مسٹیسزم, ایسٹرن ایکسرسائزز, موسٹ آف دیم آر اوکلٹک اینڈ ڈیمونک. اور بہت سی ایگزامپلز دی جاتی ہیں کیسے ایون کئی چرچز میں, کئی گروپس میں پریئرز ایسی آ گئی ہیں, آپ یہ چیز ریپیٹ کرتے چلے جائیں, آپ یہ دعائیں آپ یہ پڑھیں تو خدا آپ کے لیے یہ کر دے گا. ابھی پوری بائبل کیوں نہ پڑھیں, آپ یہ چیز, یہ آیت, یہ چیز, یہ بات, یہ زبور ریپیٹ کریں. آل اوکلٹک سٹف. سو اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم نوح کے زمانہ سے دور ہیں, پچھلی صدی سے اتنا اوکلٹک انفلوئنس کتابوں میں, ٹی وی پہ, میڈیا, ڈرامے, ناول, ہیری پوٹر اور چینلز کے تھرو آ چکا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم گیمز, بہت سی ایسی گیمز ہیں, انٹرٹینمنٹ ہے جو ڈیمونک ہے. یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ نوح کا زمانہ. مکسچر آف ہیومن بینگز اینڈ اوکلٹزم, ڈیمن اسپرٹس اور ہیومن اسپرٹس کا آپس میں ملا. متی 24 باب 27 سے 29 آیت میں بھی آپ پڑھیں گے، خدا نے کہا کہ جیسے نوح کے زمانہ میں تھا ویسے ہی میرے آنے پر ہوگا۔ تیسری اگزامپل جو ہے وہ صدوم اور عمورہ کی ہے۔ صدوم اور عمورہ کی پرابلم کیا ہے؟ وہ دور کیا تھا؟ کیوں خدا نے عدالت کی، آگ اور گندک سے ان کو مارا، پہلے پانی سے مارا خدا نے نوح کے زمانے میں، صدوم اور عمورہ کے زمانے میں آگ اور گندک سے مارا، پرابلم کیا تھی؟ سن واز دیئر، کرپشن واز دیئر، اور بیگاڑ تھا وہاں پر، لیکن جو مین پرابلم تھی وہ کیا تھی؟ وہ لوگ آئے، صدوم اور عمورہ کے لوگ آئے اور انہوں نے لوط کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دو اینجلز، دو گیسٹ تمہارے پاس آئے ہیں، وی وانٹ ٹو ہیو سین۔ سو کیا زمانہ ہے، کیا دور ہے؟ نمبر ون، لوگ گناہ میں پلیئر فیل کرتے ہیں۔ پلیئر، پلیئر کو اردو میں کہیں گے خوشی یا فیل کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اینڈ سیکنڈ چیز جو ہم دیکھتے ہیں، سین از ناکنگ ایٹ دا ڈور، دروازے کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے گناہ کا انویٹیشن دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے کون سا زمانہ؟ لوط کا زمانہ۔ اور آج بھی گناہ اس حد تک پہنچ گیا ہے آدمی کو گناہ کے پاس جانے کی اب ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہے۔ اینڈ ٹائمز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، آٹھویں آیت پڑھیں گے، کہ ان تین ایریاز میں ہی اسپیکنگ ٹو دا چرچ، ایمان کے ساتھ ساتھ ان تین ایریاز میں اپنے آپ کو کیئرفل رکھیں، بیلنس میں رکھیں اور پراپرلی خدا کے ساتھ چلیں۔ ہاں جی،
تو بھی یہ لوگ بھی اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر ان کی طرح جسم کو ناپاک کرتے اور حکومت کو ناچیز جانتے اور عزت داروں پر لانتان کرتے ہیں۔
اس کے بعد انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے نومی اور آگے دسویں آیت میں، دو فرشتوں کے تعلق سے تین باتیں اوپر بتا کر آٹھویں آیت میں، تو نیچے کس کی ایگزامپل دی گئی؟ مقرب فرشتہ میکائل کی، موسیٰ کی لاش پہ بحث ہو رہی ہے، کس کے ساتھ؟ ابلیس کے ساتھ۔ اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کیا بحث ہو رہی تھی، وہ کیا کہہ رہے ہیں، بٹ دی پوائنٹ از دس، جو ہمیں یہاں پہ انہوں نے سکھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے، ایک تو آپ یہ بات یاد رکھیں، میکائل فرشتہ کے تعلق سے ہی از دا گارڈین اینجل، کس کا؟ اسرائیل کا۔ کوئی کہے جی میں نے میکائل فرشتے کو دیکھا ہے، جبرائیل کے بارے میں تو میں نہیں ابھی کچھ بھی بیان کر رہا، لیکن مائیکل کے بارے میں یاد رکھیں، اس کا کام آدمیوں سے ملنا نہیں ہے جی، میکائل فرشتوں کے لوگ دعا کر رہے ہیں، میکائل فرشتے کو بلا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ہی از ناٹ ایٹ یور ڈسپوزل۔ میکائل فرشتہ جو ہے اسرائیل کا گارڈین اینجل ہے، اور وہ ہمیشہ اسرائیل کے لیے جنگ کرتا ہے، جب بھی اسرائیلی دعا کریں گے اور جب بھی وہ جنگ میں جائیں گے، خداوند کا فرشتہ میکائیل ان کے ساتھ جنگ کے لیے جاتا ہے۔ چرچ کا کوئی گارڈین اینجل نہیں ہے اس طرح سے، لیکن چرچ جب جنگ میں جاتا ہے تو یسوع مسیح اس کے ساتھ جنگ میں جاتا ہے، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند ہے اور وہ لشکروں کا خداوند ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اسرائیل کے لیے میکائیل جنگ کرتا ہے، کلیسیا کے لیے یسوع مسیح جنگ کرتا ہے، اور وہ جنگ میں زوراور ہے، جنگ میں زوراور ہے۔ سو واٹ جوڈ از ٹیلنگ اباؤٹ موزس، ڈیڈ باڈی ہے اس کی، میکائل فرشتہ ہے وہاں پہ، مقرب فرشتہ ہے جو عربلی سے اس کی بحث ہو رہی ہے، لیکن وہ سٹریس کس پوائنٹ پہ کر رہے ہیں؟ نمبر ون، تو بھی یہ لوگ، کون سے لوگ؟ جو چرچ میں ہیں، جن کو ہونا چاہیے لیکن ان کو کریکشن کی ضرورت ہے، اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر۔ اور جب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، یہ جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا وہم، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا کہ ویژنز इनका इसका एक मीनिंग है, और हाइपर इमोशनलिज्म। और लास्ट टाइम भी हमने इस बात को समझा और देखा, अपनी खास तौर पर अपनी जिंदगी के अहम फैसले और अपनी खिदमत के अहम फैसले रोया और ख्वाब की बुनियाद पे ना करें। दे मे बी करेक्ट बट स्टिल दे आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट चैनल्स ऑफ गॉड। जिस चीज के लिए आपने वेट करना है वो खुदा की आवाज है। खुदा ने यह नहीं कहा जिसकी आंखें हों वो देखे कि मैं तुम्हें क्या रोया दिखाता हूं, बल्कि जिसके कान हो वो सुने कि मैं कलीसियाओं से क्या फरमाता हूं। खुदा ने फरमा कि तेरे बंदे सुनते हैं। सो पहली वार्निंग वो ये दे रहा है, वहमों का वर्ड यहां पे जब यूज किया गया, डोंट गो आफ्टर अनबिब्लिकल इमोशनलिज्म। होली लाफ्टर हो रहे हैं, लोग उल्ट पुलट हो रहे हैं, कोई यहां गिर रहे हैं, कोई स्लेन इन स्पिरिट की एक अपनी जगह है। लोग दो वजह से स्लेन होते हैं, नंबर वन जब कोई डीमन या कर्स उनमें मैनिफेस्ट होता है वो स्लेन हो जाते हैं, नंबर दो अनॉइंटिंग की वजह से भी लोग स्लेन हो सकते हैं। इसकी एक अपनी जगह है, इससे ज्यादा हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। होली लाफ्टर ये नहीं है, फरिश्ते ने मरियम से कहा तू औरतों में मुबारक है, और मरियम बड़ी खुश होगी, गीत गवाने लग पड़ी, या सारा की तरफ ले जाएं, फरिश्ते ने कहा कि तेरे औलाद होगी तो उसने हंसना शुरू कर। नो, दिस इज नॉट होली लाफ्टर। तो अनबिब्लिकल इमोशनलिज्म, हाइपर पेंटिकॉस्टलिज्म नुकसानदेह। मैनी टाइम्स जब कोई वर्शिप की इबादत हो रही है, लोग मैं जब देखता हूं उनमें वो गीत डांस कर रहे हैं, मैनी टाइम्स वो वजद है, वजदान है, और डिमोनिक है या फ्लैश में है, स्पिरिट का वहां पे कोई एलिमेंट नहीं है, या कम एलिमेंट होता है। जहां पे खुदा का रूह आएगा और लोग नाच भी सकते हैं, लोग गा भी सकते हैं, इमोशंस हो भी सकते हैं, नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं, ईमानदारों के जज्बात ईमानदारों के ताबे हैं। यहां पे खादम आए, उन्होंने कहा लोगों को मसा करना है, किस तरह उन्होंने स्टेज पे बाल्टियां रखी पानी की, जनाब भर देती हैं बाल्टी, लोगों ने सुटियां बाल्टियां, और वो सर्दियों के दिन थे। मैं क्यों तो धाड़ी डॉक्टर गठजोड़ होगी नमूनिया कराने लोगों को, ये कौन सा मसा है यार जो सर्दियों में बाल्टियां फेंक फेंक के लोगों पर तुमने करना। तो ये जो उल्ट पुल्ट पेंटिकॉस्टलिज्म है, हाइपर पेंटिकॉस्टलिज्म है, एक मिनिस्ट्री थी पाकिस्तानी, वो कहते हैं जुम्मे ने दुआ करनी सारी रात खड़े होकर दुआ करनी, मैं तो सजा मिली है, ये कौन सा खुदा है ये जुम्मे ने दुआ सुन दिया, तो वो भी रात को दुआ करनी है, वो भी खड़े बैठना नहीं भी किसी ने, खड़े रहना दुआ करनी है। सो ये अपने वहमों में मुबतला, अजीब अजीब बातें, और भी बड़ी मसाले दे सकता हूं, लेकिन हम किसी के जज्बात को मजरूह नहीं करना चाहते, सिर्फ ये कहना चाहते हैं बैलेंस में रहें, तवाजन में रहें, इत्तदाल के साथ चलें, हिकमत के साथ चलें, और बाइबल को भी पढ़ते। कलीसिया की इबादत का दिन जो मुकर्रर हुआ है, इतवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है, खूबसूरत बात है, खुदा के लोग जमा हों सुबह के वक्त या शाम के वक्त जैसे आपका कल्चर अलाउ करता है, इबादत करें, कलाम सुने, गीत गाएं, शादमान हो, शुक्रगुजारी करें, हदीये दें, तारीफ करें, गवाहियां दें, उसके नाम को जला लें। सो रूह से भी चलें और अकल से भी चलें। अभी तो हम यहां तक पहुंचे हैं, और अगर हम अपने आप कंट्रोल नहीं करेंगे आगे पता नहीं हम क्या करेंगे। यहां पर लिखा है हुकूमतों को ना चीज जानते हैं। फिर उसने मिकाइल फरिश्ते की एग्जाम्पल दी कि इब्लीस के साथ बहस हो रही है, और नूब के जो पहाड़ है वहां पे मूसा को दफना दिया गया, फरिश्तों ने उसको दफनाया, फरिश्ते वहां पर मौजूद थे, लेकिन यहां पे लिखा है कि पढ़े जरा नौवीं आयत पढ़े, नौवीं और दसवीं आयत।
लेकिन मुकर फरिश्ता मिकाइल ने मूसा की लाश की बाबत इब्लीस से बहस व तकरार करते वक्त लानतान के साथ उस पर नालिश करने की जरूरत ना की।
उस पर लानतान के साथ, तू लानती है बाहर निकल जा, उस पर जरूरत ना की, बल्कि बावजूद इसके कि वो मिकाइल फरिश्ता है, वो मुकर्रब फरिश्ता है, वो उन चंद मुकर्रब फरिश्तों क्रोबीन और सराफीम में से है जो एग्जैक्टली डायरेक्टली खुदावंद के फजल के तख्त के सामने खड़े रहते हैं, फिर भी उसके बारे में लिखा है उसने जुर्रत ना की के बहस करते वक्त के उस पर क्या करे, लानतान करे। लेकिन यहां पे आप देखिए लोग अबलीस को निकालते हैं, बदरों को, लानती बाहर निकला, तू कौन है, मैं फलावा, तू एवे, मैं कोई स्पिरिट वर्ल्ड के ताल्लुक से भी और फिजिकल वर्ल्ड के ताल्लुक से भी हमें अपने लिमिट्स को, प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करने की जरूरत। हाँ जी आगे पढ़े।
बल्कि ये कहा कि खुदावन तुझे मलामत करे।
अगर किसी ने कुछ करना है तेरे साथ तो खुदावन करे तेरे साथ। दसवीं आयत।
मगर जिन बातों को नहीं जानते उन पर लानतान करते हैं और जिनको बेअक्ल जानवरों की तरह तबई तौर पर जानते हैं उनमें अपने आप को खराब करते हैं।
सो जूड सेकंड चीज हमें यहां पे बता रहे हैं वार्निंग के तौर पे। पहली चीज हमने देखी अनबिब्लिकल हाइपर इमोशनलिज्म, पेंटिकॉस्टलिज्म और हो सकता है इसके बाद नियो पेंटिकॉस्टलिज्म आ जाए, इट्स डेंजरस। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं वो ये है डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, अपनी स्पिरिचुअल लिमिट्स, फिजिकल लिमिट्स। अगर आप चर्च में हैं, मिनिस्ट्री में हैं, लीडरशिप में हैं, किसी भी जगह पे हैं, डिवाइन अथॉरिटी में हैं, अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें। क्रिएटिव ऑर्डर इज इररिफ्यूटेबल। जो ऑर्डर खुदा ने बना दिया है, हेड कौन है, आदमी का सर मसीह है, मसीह का सर खुदा है, औरत का सर मर्द है। जो खुदा ने ऑर्डर बना दिया है, डिवाइन ऑर्डर बना दिया है, लूसीफर भी मुकर्रब फरिश्ता है, जिब्राइल भी, मिकाइल भी मुकर्रब फरिश्ता है, और वो दोनों ऑर्डर में भी वो बराबर थे या जो भी था वो एक दूसरे पे लानतान नहीं कर सकता। वो गिर भी गया है फिर भी मिकाइल ने उस पर लानतान नहीं की। और पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है गॉड्स क्रिएटिव ऑर्डर इज इररिफ्यूटेबल। आप माने या ना माने इस ऑर्डर को, इस तरतीब को खुदा ने यह मुकर्रर कर दी है, इट इज बाइंडिंग। तीसरी बात जो यहां पर बताई गई वो जिन बातों को नहीं जानते हैं उन पर लानतान करते हैं। डोंट स्पीक अगेंस्ट डिग्निटीज। लूसीफर है, खुदा ने उसको एक पोजीशन दी, खुदा ने उसको एक मकाम दिया था, खुदा ने उसको एक ओहदा दिया था, और खुदा किसी वो खुदा का नौकर था, और खुदा ये पसंद नहीं करता कि मेरे नौकर पर कोई और लानतान करे, कोई और उसकी मुखालफत है, मेरा नौकर है मैं उसको सजा दूं। सो अपनी जो स्पिरिचुअल लिमिट्स हैं, चर्च की जो बात चर्च की हो रही है, चर्च की जो लिमिट्स हैं, लीडरशिप की जो लिमिट्स हैं, डोंट स्पीक अगेंस्ट योर डिग्निटीज। पसंद है, नापसंद है, नाराज है, खुश है, जो भी है, लेट गॉड डील विद हिज पीपल। खुदा के करेक्शन के दो ही मेथड, नंबर वन ही सेंड हिज सन तरबियत के लिए, नसीहत के लिए, किसी भी रूहानी शख्स के लिए, लीडर्स के लिए खुदा किसको भेजता है, बेटों को। और जितने सीनियर लीडरशिप होगी उसकी करेक्शन के लिए खुदा उतना सीनियर प्रॉफिट भेजेगा, प्रॉफिट्स भेजता है खुदा करेक्शन के लिए। डेविड की करेक्शन किसने की, नातन नबी ने। प्रॉफिट्स आर देयर टू रिब्यूक एंड टू करेक्ट। सेकेंडली खुदा करेक्शन के लिए फिर एनिमीज को भेजता है। नंबर वन मेथड क्या है, सन्स, द वर्ड ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड, द सन्स ऑफ गॉड। और दूसरा खुदा का मेथड क्या है, एनमी। जब लोग कोई भी खुदा की बात नहीं सुनता, खुदा की आवाज नहीं सुनता, खुदा दुश्मन को भेज देता है। और आखिर में हम जल्दी से देखेंगे आखिरी तीन एग्जांपल्स, ग्यारहवीं आयत, द डिटीरेशन इन द चर्च। और इसमें जो केयरफुल ऑब्जर्वेशन है जो मैं बताना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वो ये है कि हम सबको इसको बड़े सीरियसली लेना चाहिए। चर्च जवाल की तरफ जा रहा है, चर्च ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, चर्च नीचे की तरफ जा रहा है, और उसकी वजह क्या है? ये तीन बातें अभी जो हम पढ़ने को हैं, और ये खत्म नहीं होंगे, आखिरी जमाने में ऐसे ही होना है, चर्च में ऐसे ही होना है। लेकिन आपने फैसला करना है कि मैंने कैसे होना है, मैंने कहां पे रहना है, मैंने कैसे बनना है। जो होना है वो तो होना है, लेकिन मैंने कैसे बचना है, और इस बाबल की कश्ती में से आपने आपको बाहर निकालना है और नू की कश्ती में दाखिल होना है। 11वीं आयत,
इन पर अफसोस ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलाम किसी गुमराही इख्तियार की और कोरह की तरह मुखालफत करके हलाक हुए।
So over here Jude is speaking about the end time church, और बड़े स्पेसिफिकली वह हमें ये बता रहा है ये तीन मेन प्रॉब्लम्स होंगी चर्च के अंदर, कॉन्ग्रीगेशन में, लीडरशिप में, चर्च के स्ट्रक्चर में। और जब तुम इन तीन बातों को देखो तो समझ लो कि हम हनूक के जमाने में दाखिल होने वाले हैं, और हनूक का जमाना क्या है? द रैप्चर। तो पहली मिसाल जो हमें दी गई वो किसकी है? उन पर अफसोस ये काइन की राह पर चल। चर्च में कैसे लोग होंगे? काइन की तरह के लोग होंगे। काइन कैसा था? कंपेयर करें अब्रानियों 11 बाब उसकी चौथी आयत पढ़ेंगे। व्हाट इज द वे ऑफ द केन? काइन को जब खुदा ने उसने वो मर्डर किया, खुदा की हजूरी से भागा, तो वो बागे अदन के मशरिक में गया एक इलाके में। उस इलाके का नाम क्या था? एनओडी, नूद का इलाका। हाँ जी पढ़े जरा इब्रानी 11 बाब उसकी 4।
ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफसल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई।
सो काइन की जो प्रॉब्लम थी वो कुर्बानी की प्रॉब्लम थी। When people gave wrong sacrifices, unspiritual sacrifices, वो उनको खुदा के नजदीक नहीं लाते हैं बल्कि खुदा से दूर ले जाते हैं। इस कुर्बानी का रिजल्ट क्या हुआ? उसको भागना पड़ा। कौन से इलाके में भाग गया? नूद के इलाके में भाग गया। नूद के जो लुगवी माने हैं, जो वर्ड है नॉट, उसके जो लुगवी माने हैं वो ये है द होमलेस, फ्यूजिटिव, वॉन्डरिंग, अनस्टेबल, होमलेस, अनस्टेबल, फ्यूजिटिव, नॉड का ये मतलब है। और सेम अगर आज आप चर्च की हालत देखें तो चर्च नूद के इलाके में, चर्च मेंबरशिप नूद के तरह जिंदगी बसर कर रही है। सो केन, व्हाट वाज केन? ही वाज अ रनवे, ही वाज होमलेस। अपने घर से भाग गया, नूद के इलाके में गया, और नूद का मतलब है होमलेस, होमलेस बेघर। और आज बेशुमार लोग हैं जो चर्च में जाते हैं बट स्टिल दे आर चर्चलेस। दे गो टू मैनी चर्चेस, दे प्रीच इन मैनी चर्चेस, दे मिनिस्टर इन मैनी प्लेसेस। दुआ के लिए जाते हैं, मिनिस्टर करने के लिए, मिनिस्टर होने के लिए, लेकिन उनका अपना कोई चर्च नहीं। इस मिशन में जाते हैं इस वजह से, उस मिशन में जाना है कार्ड मिला हुआ है, उस चर्च में जाना है बच्चों की फीस माफ हो जाती है। दे गो इन डिफरेंट मिशंस, लेकिन काइन की तरह दे आर रनिंग अवे फ्रॉम गॉड। चर्च में जाते हैं लेकिन अपना कोई भी उनका चर्च नहीं है, दे आर स्टिल विदाउट अ चर्च। सो काइन की प्रॉब्लम क्या है? मैन मेड रिलीजन, मैन मेड लीडरशिप, स्पिरिचुअल जंक में जिंदगी बसर कर रहे हैं, स्ट्रेन टीचिंग्स, डिमोनिक डॉक्ट्रिन्स, फॉल्स टीचिंग्स। काइन ने अपनी कुर्बानी बना ली, खुदा के हजूर से भाग गया, ईमान की राह से बरगश्ता हो गया। आज इतने चर्च हैं हमारे एरिया में, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं स्टिल दे आर चर्चलेस। चर्च में जाते भी हैं लेकिन चर्च की बरकत नहीं लेते हैं। अपने आप को एक चर्च के साथ बांध लें, जहां भी खुदा आपको लेके जाता है, जहां भी खुदा आपको गाइड कर रहा है, जहां भी खुदा आपको लेके जाना चाहता है, गो देयर, स्टे देयर एंड बी ब्लेस्ड देयर। रनिंग, भागने वाली जो कलीसियाएं हैं वो काइन की तरह की के लोग हैं जो भागते रहते हैं, मैन मेड रिलीजन। और फिर चर्च में इमोशनल फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग बहुत सी। आप चर्च में आप ये दें, खुदावंद आपको ये देगा, आप इतने पैसे दें, आप इतने डॉलर, आप इतने रुपए, आप इतनी चीजें, आप इतने पैसे कमिट करें, प्लेज करें, खुदा को दें, आज ही दें, अभी दें, खुदा आपको आपकी जिंदगी में ये ब्रेक थ्रू लाएगा, आज ये हो जाएगा, आज ही अपना बेहतरीन चर्च को दें, सोना थैली में डाल दें, चांदियां डाल दें, जेवर आज अपने दे दें खुदावंद को, घड़ी अपनी दे दें खुदावंद, आज ही आपको बरकत देगा। दिस इज ऑल रबिश, दिस इज गार्बेज। खुदा को जो देना है वो दें, दसवां हिस्सा खुदा को दें, लव ऑफरिंग खुदा को दें, जो कहते हैं खुदा को दें, अपना बेहतरीन खुदा को दें, लेकिन खादमों के कहने से और जज्बाती होने से खुदा को ना दें। खूबसूरत गिविंग वो है, जेन्युइन गिविंग वो है कि आपने किसी से नहीं कहा कुछ भी स्पेशल देने के लिए, लोग देना शुरू कर देते। सेकंड पढ़ें बलाम के बारे में, 11वीं आयत का वो पार्ट पढ़ें।
और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलाम की सी गुमराही इख्तियार की।
बलाम वो पहला नबी है जिसने अपने गिफ्ट को, टैलेंट को, मिनिस्ट्री को, अनॉइंटिंग को, कॉलिंग को पैसे के लिए यूज किया। Somebody gave him money, नबुवत का चलो जेब पा। और खुदा ने यहां पे उसका नोटिस लिया इस बात में, दिस स्पिरिट मस्ट नॉट कम इन द चर्च। गिफ्ट को सेल ना करें, कॉलिंग को सेल ना करें, अनॉइंटिंग को सेल ना करें। लेट गॉड बी गॉड एंड लेट जीसस बी द सेवियर। फॉल्स प्रॉफिट्स यूजिंग देयर गिफ्ट्स और कॉलिंग्स और कंट्रोल टू गेन प्रोस्पेरिटी। लीडरशिप को, एंड टाइम लीडरशिप को, पेंटिकॉस्टल लीडरशिप को, चर्च लीडरशिप को, हमें बार बार अपने आप को इन बातों से बाहर रखना है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। मेरा गिफ्ट खुदा के जलाल के लिए है, खुदावंद मेरी नीड्स को पूरा करेगा। हम मेहनत करेंगे, 8 घंटे रोज काम करेंगे, खुदा के फील्ड में, खुदा के हार्वेस्ट में प्रेयर करेंगे, फास्टिंग करेंगे, ईमान के बीज बोएंगे, दैयकियों के बीज बोएंगे, अच्छी फसल के बीज बोएंगे, अच्छी फसल को काटेंगे। लेकिन जो खुदा से हमने लिया है, तुमने मुफ्त पाया है तो मुफ्त देना। हाँ ये और बात है, लोग जो भी देना चाहते हैं दे कैन गिव इट, बट नॉट दैट वी आर डिमांडिंग। लेकिन इसलिए लोग दें और हम लेंगे, खुदा उनके दिल में डाल रहा है। सो बेलम स्पिरिट को अपनी जिंदगी में से रिव्यू करते, अपनी जिंदगी में से काइन की स्पिरिट को रिव्यू करते रहें। खुदा मेरी जिंदगी में वो पॉइंट ना आए जब मैं अपने जहन की इख्तरा से डॉक्ट्राइंस बना लूं। क्या हमने यहां पर पढ़ा के मजदूरी के लिए बड़ी हिरस से बलाम की सी गुमराही पर चले, या इस ग्रुप में नंबर 3 कोरा। और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए, दे इवन डाइड द पीपल। क्या किया कोरा ने, क्या किया उसने, जो भी किया। बट रिमेंबर दिस थिंग, अपनी जिंदगी में से, अपने चर्च में से कोरा की जो स्पिरिट है उसको आप रिब्यूक करते रहे। खुदा हमारी जिंदगियों में केन की स्पिरिट ना हो, बलाम की स्पिरिट ना हो, कोरा की स्पिरिट ना हो। वी रिब्यूक इट, वी कर्स इट, वी कैंसल इट। खुदा हमारे जहन से, चर्च से, जिंदगियों से, थियोलॉजी से ये जो स्पिरिट्स हैं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। क्या किया कोरा ने, ही टुक 250 पीपल, 250 लोग उसने लिए, एक अपना ग्रुप बनाया, एक वर्षिन अपनी वर्षिन टीम बनाई। गिनती 16 बाब उसकी 3 आयत में भी आप पढ़ सकते हैं। और उसने मोसेस से कहा, वी डोंट नीड यू। उसने एरन से कहा, मोसेस एज अ प्रॉफिट एंड एरन एज अ प्रीस्ट, वी डोंट नीड यू, वी कैन डू आवर स्टफ आवर सेल्फ। हम अपनी इबादत खुद कर लेंगे, हम अपनी परस्तिश खुद कर लेंगे। 250 लोगों का उसने एक ग्रुप बनाया और उसका पॉइंट क्या था, वी डोंट नीड गॉड्स लीडरशिप। उसने कहा अपनी वर्शिप टीम बना ले। अजीब अजीब काम करने शुरू कर दिए, अपनी प्रीस्टहुड, अपनी थियोलॉजी, अपना ग्रुप, अपनी टीम बना ली। और उन्होंने कहा हमें मोसेस या एरन की जरूरत नहीं है, ये 200 लोग हम मिलकर खुदावंद की इबादत करते रहेंगे। फॉल्स लीडरशिप, कोरा की स्पिरिट क्या है, फॉल्स लीडरशिप। फॉल्स लीडरशिप ज्यादा होती चली जाएगी, लेकिन जो बचना चाहता है, जो कायम रहना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है और जो दूसरों को खुदा की बादशाहत में दाखिल करना चाहता है, इन तीन स्पिरिट से अपने आप को आजाद रखें, प्रेयर करते रहें। खुदावंद खुदा एंड टाइम के इस बड़े क्रिटिकल मोमेंट में मुझे संभाल के रखे और मुझे बचा के रखे। इसराइल की प्रॉब्लम क्या थी, नंबर वन हमने देखा इसराइल, नंबर दो हमने देखा फरिश्ते, नंबर थ्री हमने देखा सदोम और अमोरा, नंबर चार हमने देखा काइन, नंबर पांच हमने देखा बलाम, नंबर पांच हमने देखा कोरा। फॉल्स लीडरशिप, अदर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, प्रिवर्टिंग गॉड्स वर्ड, और नंबर सेवन जो जूड 14 में है, हन्नूक। हन्नूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो उठा लिया गया। और हन्नूक ने अपनी किताब में लिखा, हन्नूक की किताब मौजूद है, एनक 1 एंड एनक 2, हन्नूक पहली किताब और दूसरी किताब, जिसका ये रेफरेंस यहां पे दिया गया है कि खुदावंद अपने हजारों हजार फरिश्तों और मुकद्दसीन के साथ आया। वो चर्च, वो ग्रुप, वो लोग जहां पे शागिर्दियत नहीं है, वहां पे लोग कैसे होंगे, नॉमिनल। डिसाइपलशिप में दो चीजें आती हैं, करेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। चर्च इंस्ट्रक्शन चाहता है, करेक्शन नहीं चाहता। लेकिन जो सीरियस पॉइंट है वो ये है, देयर कैन बी नो लीडरशिप विदाउट डिसाइपलशिप। बाइबल कॉलेज लीडरशिप नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिसाइपलशिप। दो तीन चार लोगों को ले, उनको डिसाइपल करें। यीशु मसीह ने 12 लोग लिए और 12 लीडर प्रोड्यूस हो गए, 12 में नहीं बल्कि 11 हुए, एक उसमें स्लिप कर गया, बाद में और ऐड हो गए। लेकिन देयर कैन बी नो लीडरशिप विदाउट डिसाइपलशिप। लीडरशिप विदाउट डिसाइपलशिप इज अ डेड लीडरशिप। किसी बाइबल स्कॉलर ने कहा है, व्हेन एवर देयर इज रॉन्ग लीडरशिप इन द चर्च, when there is wrong worship in the church and when there is wrong sacrifice in the church is a dead church. Wo kalisiya murda kalisiya.